व्यवस्था नहीं तो उसके जीवन में कुछ नहीं। प्रसन्नता आनी चाहिए। प्रसाद में गीता का समापन है और विषाद में गीता का प्रारंभ है। अब शंका ये होती है कि आप श्री ने कहा बिल्कुल अक्षर सौ सत्य कि ये मुक्त ही नहीं, अर्जुन महामुक्त है। अर्जुन कोई सामान्य बद्ध जीव नहीं है। बद्ध जीव से कृष्ण की चर्चा और परचर्चा नहीं हो सकती। यदि अर्जुन भी माया से बंधा हुआ होता तो भगवान उसके साथ संभाषण भी नहीं करते। माया से बद्ध जीवों के साथ प्रभु कभी वार्तालाप नहीं करते। अर्जुन के साथ विषम परिस्थिति में जो इतना गीता की चर्चा की उसका कारण है पांडवानाम धनंजय। और सब बातों में युधिष्ठिर बड़े हैं पर जहां विभूति योग का वर्णन करने लगे वहां बताया पांडवों में अर्जुन में हूं। तो स्वयं अपने आप की चर्चा का नाम गीता है। यह अर्जुन स्वतंत्र नहीं है। ऐसा अर्जुन जो जीवन में कहता था अर्जुनस्य प्रतिज्ञे द्वे न दैन्यम न पलायनम, न तो मैं जीवन में कभी दीनता लाऊंगा और न कभी युद्ध से भागूंगा। जिस अर्जुन ने ये दो प्रतिज्ञा की, जिसको जीवन भर उसका निर्वाह किया, आज वह इतना पलायनवाद स्वीकार कर रहा है और भाग रहा है, ये क्या बात है। इसका विचार करते हुए श्री वल्लभाचार्य जी महाराज और उनके आशय को हमारे तत्वबोधनीकार जो हैं, उन्होंने गीता में बताया कि ये विषाद जो है ये विषाद अर्जुन का नहीं है, ये विषाद श्री कृष्ण का दान है। वल्लभाचार्य जी महाराज के आशय को बताते हुए श्री वल्लभ लाल जी कहते हैं कि ये विषाद भगवान ने जानबूझकर अर्जुन को दिया, क्योंकि जब तक मानव को जगत से कुछ विषाद यानी वैराग्य नहीं होता तब तक वह ब्रह्म विद्या का अधिकारी नहीं होता। हमारे गीता के अध्याय के अंत में क्या आता है, ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे इत श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम। तो ब्रह्म विद्या का अधिकारी जब तक अर्जुन न बनेगा तब तक उसके साथ ब्रह्म विचार कैसे किया जाएगा। इसलिए यहाँ विषाद को भगवान ने स्वयं दान दिया अर्जुन को। अर्जुन भगवान ने जब दिया तो विषाद से क्षीण हो गया, तब भगवान उस विषाद को धीरे धीरे ब्रह्म विद्या से हटा रहे हैं, स्वयं दे रहे हैं, स्वयं हटा रहे हैं। जो कुछ करता कारयिता हरि, करने वाले और कराने वाले भक्ति शास्त्र में भगवान ही हैं। इसलिए ज्ञान का वेदांत अलग है और हमारे भक्ति वेदांत भक्ति का वेदांत अलग है। ज्ञान का वेदांत वो ब्रह्म जो कुछ हो वो ब्रह्म वेदांती कहते रहे, हमारे भक्ति का वेदांत तो हमारी गोपी जन कहते हैं। उन्होंने कहा भगवान के नेत्र नहीं, गोपियां कहती हैं अरे लाख बार अंजन अजायो इन आँखिन में। हमने लाखों बार काजल लेकर के श्री कृष्ण के नेत्रों में लगाया, उस सांजन को तुम लोग निरंजन कहते। कैसे हो सकता है जो सांजन है वो निरंजन कैसे हो सकता। आप कहते भगवान के चरण नहीं, हमने गायों को चराते हुए उन्हें देखा, जो भगवान के चरण ही नहीं तो गोचारण लीला किसने। भगवान के यदि श्री हस्त नहीं है तो श्री गिरिराज किसने उठाया। ये गोपी के अकाट्य तर्क, श्री गोपिकाओं के अकाट्य तर्कों के आगे उद्धव जी नमित हो गए, उद्धव जी श्रमित हो गए और श्री जी झुक करके कहने लगे वंदे नन्न प्रयस्त्रीणाम पाद रेणु मभीषत यासाम हर कथोद्गीतम पुनाति भवनत्रय। मैं नंद बाबा की ब्रज की स्त्रियों के को प्रणाम करने का अधिकारी नहीं हूँ, क्यों कि मैं ज्ञान वेदांती हूँ, मैं भक्ति वेदांती नहीं। महाराज वो उद्धव जी ज्ञान वेदांती थे, उनको भक्ति वेदांत पढ़ाने के लिए भगवान ने ब्रज में भेजा कि जाइए भक्ति वेदांत पढ़ना हो तो गोपिकाओं की शरण लीजिए, श्री राधा रानी की शरण जाइए तो आपको भक्ति वेदांत मिलेगा। भक्ति वेदांत का नारायण अलग है और ज्ञान वेदांतियों का नारायण अलग है, ये तीन ही तो आपका शब्द है, भक्ति वेदांत और नारायण। तो महाराज विशेष क्या कहे, बड़ा आनंद है, मन तो ऐसा करता है पूरी रात हमारा आपका चलता रहे, पर व्यवहार तो देखना पड़ता है। ब्रह्म विद्या का अधिकार ही इसे बनाने के लिए, इसके लिए कुमति को हटाने के लिए एक छोटी सी बात कर दूं, डेढ़ मिनट की है। अर्जुन से कहा तुम द्रोणाचार्य को बाणों से मारो, अर्जुन से कहा तुम भीष्म पितामह को बाणों से मारो। अब जरा दो मिनट विचार करें आप सब लोग। तो अर्जुन कहता है महाराज द्रोण मेरा विद्या गुरु है और भीष्म मेरा पूर्वज पुरखा है, ये दोनों तो पूजनीय हैं, जो पुष्पों से पूजनीय हैं, अभिनंदनीय हैं, वंदनीय हैं, नमनीय हैं, उनके लिए हम कैसे बाणों से बाणों मारे इनमें। तो हट गया। तो अब श्री वल्लभाचार्य महाराज ने विचार किया, क्या गुरु को नमारना अर्जुन की कुमति है या सुमति। बस ये कह करके मैं समाप्त करता हूं। तो लोगों ने, धर्मशास्त्र के अनुयायियों ने एक स्वर से कहा ये तो अर्जुन की सुमति है गुरु को नमारना। हमारे श्री वल्लभाचार्य जी महाराज कहते हैं आप लोगों ने गीता को नहीं समझा, श्रीमद् भागवत को नहीं समझा। यहां चाहे गुरु हो और चाहे पूर्वज हो, यहां जो कृष्ण का विरोध कर रहा है उसमें गुरुत्व हो ही नहीं सकता। और कृष्ण का विरोध करने वाला कभी पूर्वज वंदनी हो ही नहीं सकता, जिसके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्पष्ट कहा तजे पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी बल गुरु तजो कंस ब्रज बन तन भई जग मंगलकारी। कृष्ण के विमुख होने से श्री वल्लभाचार्य जी ने कुमति और सुमति का लक्षण बताया, जो भगवत की ऋषित भगवत की ऋषित कार्योन्मुखी मति सुमति। भगवान जो कुछ करना चाहते हैं उसको सहर्ष करने को जो तैयार हो जाता है उसका नाम है सुमति, और भगवान जो करना चाहता है उसका जो जवाब सवाल करने लगता है कथम भीष्मम हम संघे द्रोणं च मधुसूदनो इसमें प्रत्यामी पूजा रहू अर्जुनो, मैं गुरु के ऊपर बाण नहीं चलाऊंगा, ये अर्जुन की कुमति है। यहाँ गुरु को नमारना ही कुमति है, क्योंकि भगवान उनके आसुरा वेश के कारण उसे मरवाकर दूसरा दिव्य देह देना चाहते। ये द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह वासांश जीर्णानि यथा विहायो नवान गृहाणी, वासांश जीर्णानि जैसे हम पुराने वस्त्रों को छोड़कर नवीन वस्त्र धारण कर लेते हैं, जैसे पुराने वस्त्रों को छोड़कर हम नवीन वस्त्र धारण करते हैं, ऐसे ये द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह इस जर्जरित कलेवर को छोड़कर नवीन देवता देह धारण करने की अभिलाषा कर रहे हैं, इसलिए इनके मनोरथ को अर्जुन तू पूरा कर दे। इसलिए भगवान की बात को न मानना और भीष्म के वध से और द्रोणाचार्य के वध से पलायनवाद किया, भगवान ने कहा क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, तुरे क्षुद्र विचार है, तू बड़ा दुर्बल हृदय का है। लोगों ने कहा महाराज अर्जुन को कुमति सिद्ध करना गुरु न मारने से, तो कहा नहीं जो मर रहे हैं उनसे ही पूछ लो। वल्लभाचार्य महाराज कहते हैं जो मरने वाले हैं उनसे ही पूछ लो, तो भागवत में भीष्म से पूछा कि अर्जुन ने जो तुम पर बाण नहीं छोड़ा ये अर्जुन की कुमति है या सुमति है। तो अर्जुन भीष्म स्तुति नौवां अध्याय है, श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंद नौवा अध्याय भीष्म स्वयं करता है। प्रसन्ना मुखम निरीक्ष स्वजन बधाद विमुखस्य दोष बुद्ध्या कुमत महरदात्म विद्यया चरण रति परमस्य तच्छमि। सारांश संक्षिप्त में भीष्म पितामह का रहा है कि जिसको खोटी बुद्धि हो गई, मुझे मारने से भगा यानी खोटी बुद्धि, भगवान मेरा हित चाह रहा है और मुझे इस पांडव कौरवों के जाल जंजाल से छुड़ाकर दिव्य देव देह देना चाह रहा है, भगवान के उस इष्ट को न समझ कर इसने जो मुझ पर बाण नहीं मारे तो कुमती या अर्जुन की सबसे खोटी मत है। इसके लिए अहरत आत्मविद्या, गीता का दूसरा नाम है आत्मविद्या। आत्मविद्या के द्वारा अर्जुन की कुमति को समाप्त कर और गुरु के मारने के लिए तैयार कर उसको सुमति स्थापित की। तो सिद्धांत गीता का यही है कि कुछ भी हो जाविध राखे श्याम, प्रभु जो करना चाहता है, जो हमारे यहाँ लगता है नोदना चोदना लक्षणों विधि जो है वही विधि वाक्य है। वेद जिसको कहे, अरे वेद क्या भी प्रामाण्य हमारे भक्ति शास्त्र में, वेद को प्रमाणित क्यों माना जाता है, वो हमारे श्री बाल कृष्ण की वाणी है, श्वास है, यस्य निश्वसितं वेदाः। यदि भगवान का वो श्वास नहीं होता तो प्रामाण्य नहीं आता। जब भगवान के श्वास में इतना प्रामाण्य है वेद में, तो भगवान जा वैखरी भाषा से अर्जुन से कह रहा है, क्या कृष्ण वाणी से भी ज्यादा किसी की वाणी हो सकती है। मैं कह रहा हूं कि मया हताम त्वं जहि माव्यथिष्ठा। सब जगह परीक्षा देने के बाद प्रमाण पत्र मिलता है, परीक्षा देने के बाद प्रमाण पत्र मिलता है, व्यापार कर लेने के बाद लाभांश मिलता है। और यहां देखिए एक श्लोक में झांकी करके समाप्त कर दूंगा भाई, नहीं तो बात तो बहुत है, फिर होगी फिर मिलेंगे हम तुमसे। तो भीष्मं च द्रोणं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतां। स्पष्ट कह दिया, त्वं जहि माव्यथिष्ठा युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान्। अभी युद्ध प्रारंभ नहीं हुआ है, प्रबल पत्र दे दिया। भगवान कहते हैं भीष्मं च साधारण द्रोण जो कार्य है, जो भगवान इच्छा करते हैं उसमें जो सहाय करती है, इसलिए केकई को कुमति बताने वाला वही अज्ञ है जिसने साधु सभा नहीं की, जिसने साधुओं की सभा का सेवन नहीं किया, वो केकई को कुमति बता सकता है। केकई तो निमित्त बनी है भगवान के कार्य करने में, केकई महाभागा है, केकई वंदनीय चरणा है, क्योंकि जो ईश्वर के कार्य करने में अपन जघन्य गालियां सहती हुई भी भगवत कार्य के लिए तैयार है। इसलिए भगवत को कार्य कर को संपादन करने वाला जो ये अर्जुन है, इसको आत्मविद्या गीता के द्वारा ही उन्होंने इसको मति को निवारण किया। और एक ही कहा, और कुछ आप पर हो या न हो, क्या काले तू माम अनुस्मरण नहीं जनो जघन्य अन्य वदन्ति गुणहीन जनो जघन्य व्यासो वदत्यखिल वेद विशेष विज्ञो। अखिल वेद के विशेषज्ञ व्यास जी वदति, व्यास जी कह रहे हैं, व्यासो वदत्यखिल वेद विशेष विज्ञो नारायण स्मरण हीन जनो जघन्य।
बिहारी श्री राधा विनोद बिहारी जीव की जय। श्री राधा गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जीव की जय। विष्णुपाद परिव्रजकाचार्य वर्जस्तोत्र सदस्य श्रीमद भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज की जय। ओम विष्णुपाद श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ण विष्णुपाद श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ण श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद की जय। रूपानुवाचार्य गुरुवर्ग की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। भक्ति विघ्न विनाशन करण सिंह देव की जय। भक्त राज प्रहलाद महाराज की जय। सर्वाविष्णु गिरिराज गोवर्धन की जय। अनंत गरीब वृंद की जय। गीता गोष्ठी की जय। गीता गोष्ठी आयोजनकारी भक्त वृंद की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।
आदरणीय परम श्रद्धे श्री मनलाल जी शास्त्री, परम आदरणीय परम श्रद्धे श्री भक्ति वेदांत श्री नारायण जी महाराज, गीता प्रेमियों, गीता भक्तों, ये हमारा परम सौभाग्य है कि आज हमारे बीच दो विभूतियां गीता गोष्ठी के इस आयोजन के अवसर पर उपस्थित हैं। गीता आश्रम गौघाट प्रति माह पूर्णमासी के दिन इस गोष्ठी का आयोजन करता है और ये सब आप सब लोगों के संयुक्त प्रयास से और परम श्रद्धे श्री मनन लाल जी शास्त्री जी के आशीर्वाद से पिछले लगभग 3 वर्षों से सफलतापूर्वक संपन्न हो रहा है। जैसा आपको पता है कि गीता आश्रम गौघाट की स्थापना श्री श्रद्धे श्री हरिहर जी महाराज ने यहाँ पर लगभग 1950 में की थी और गीता आश्रम की करीब लगभग 400 शाखाएं विश्व भर में फैल गई हैं। गीता अंतर्राष्ट्रीय महासम्मेलन अगले वर्ष, नवम गीता अंतर्राष्ट्रीय महासम्मेलन अगले वर्ष वृंदावन में 21 से 24 नवंबर तक हम आयोजित कर रहे हैं। प्रथम आयोजन जो प्रथम महासम्मेलन हुआ था 1972 में, वो हमारे शंकराचार्य शरणानंद जी महाराज के कर कमलों द्वारा प्रारंभ हुआ था। उसके पश्चात 7 अंतर्राष्ट्रीय महासम्मेलन और हो चुके हैं, जिनमें डॉक्टर करण सिंह और गीता पर जो विभिन्न विद्वान हैं उनका निरंतर हमें सहयोग रहता है। इस 21 से 24 नवंबर तक होने वाले गीता महासम्मेलन में इसका आयोजन फोगला आश्रम वृंदावन में होगा और संत महात्मा और विद्वान न केवल भारतवर्ष से बल्कि भारतवर्ष के बाहर से और विभिन्न धर्मों के, न केवल हिंदू धर्मों के बल्कि और धर्मों के अनुयायी भी गीता पर अपना व्यक्तित्व और अपना अनुसंधान और अपने लेख और अपनी रचनाएं उस महासम्मेलन में प्रस्तुत करेंगे। मैं आप सभी गीता भक्तों से आग्रह करता हूं कि तन मन और धन से इस हमारे महासम्मेलन में आप सहयोग दें। होली के पश्चात कार्य गीता महासम्मेलन का बहुत तीव्र गति से प्रारंभ हो जाएगा और महाराज श्री यहाँ पर कुछ समय रहेंगे और हमारा मार्गदर्शन करेंगे। गीता एक अनुपम ग्रंथ है और गीता पर प्रति माह हमें अमृतमयी शास्त्री जी की वाणी सुनने का समय समय पर हम लोग लाभान्वित हुए हैं और मौका मिला है। गीता प्राणी मात्र का कल्याण कर सकती है।
ज्ञानंजन शलाके चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतिशे गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालयै कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदभक्ताय नमो सर्वप्रथम मैं अपने परमाराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट हूँ विष्णुपाद अस्तोत्र सत्यमद भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अपनी श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पित करता हूँ। पश्चात हमारे परम श्रद्धेय श्री शास्त्री महोदय जी का मैं विशेष अभिनंदन करता हूँ। विशेष करके ये ब्रज की विभूति है। विद्वान बहुत से लोग हो सकते हैं, भागवत के भी विद्वान बहुत से लोग हो सकते हैं, गीता के भी हो सकते हैं, किंतु भागवत के निर्भीक वक्ता उसके तात्पर्यों को अनुधावन कर और जनसाधारण में उसे व्यक्त करना ये साधारण बात नहीं। कुछ दिन पहले मथुरा में कोई भागवत विचार विमर्श के संबंध में कोई इष्ट गोष्ठी हुई थी, मुझे भी उसमें निमंत्रण किया गया था। मैं अस्वस्थतावश बंबई चला गया, मैं उस सभा गोष्ठी में नहीं था, किंतु मैंने सुना। इसी गोष्ठी का कुछ विषय था कृष्ण का आविर्भाव स्थल जन्म स्थल कहाँ है, मथुरा है या गोकुल है। एक पद से मथुरा के जितने भी पंडित हैं और जगहों के हैं उन्होंने कहा मथुरा है, किंतु पंडित चूड़ामणि हमारे मनोहर लाल शास्त्री जी ने निर्भीक कंठों से हमारे आचार्य परंपरा की बातों को मान्यताओं को, जिसको श्री चैतन्य महाप्रभु वल्लभाचार्य ही नहीं भागवत के जितने बड़े बड़े टीकाकार हैं और मंत्रदर्शा ऋषि हैं सुखदेव गोस्वामी का जो विचार है निर्भीक कंठ से केवल एक तरफ ये और एक तरफ मथुरा के जितनी विद्वत मंडली थी किंतु इन्होंने सिद्ध किया कि कृष्ण का आविर्भाव यहां हो सकता है, किंतु जन्मोत्सव प्रकट ये जसोदा जी के गर्भ से गोकुल नहीं हुआ। ऐसे निर्भीक विद्वान ब्रज की विभूति को मैं अपना सादर अभिनंदन ज्ञापन करता हूं। बड़े बड़े वक्ता लोग मथुरा में आते हैं भागवत के, बड़े बड़े विद्वान भी लोग आते हैं जहां पर के लाखों लोग जाते हैं, किंतु लाखों लोग सार को ग्रहण नहीं करते। ऊपर से उसकी कुछ मधुपुष्पित बातों को ही लेकर के बस उसी में रमण करते हैं, अनुभवी विद्वानों की बातों को ग्रहण करना साधारण जन समाज के लिए बहुत जरा कठिन है। उसके बैकग्राउंड में उसकी पटभूमिका में कुछ होना चाहिए। सदगुरु जब तक न रहे, वैष्णवों का संग जब तक न रहे, तो गीता और भागवत का तात्पर्य समझना बड़ा भारी कठिन है। इसलिए इस विषय में अधिक मैं न जा करके अपने वक्तव्य पर आऊंगा। इसलिए मैं इस विद्वान पुरुष का मैं बहुत हार्दिक अभिनंदन ज्ञापन करता हूँ। विशेष करके यहाँ के सब समय पूर्णिमा के तिथियों अवसरों पर ये आते हैं, आप लोग उनके हृदय की भावों को समझने की चेष्टा करेंगे। साधारण विद्वान नहीं है। यदि ये ब्रश जब चले जाएंगे अप्रकट में, इनकी अभाव की पूर्ति करना बड़ा भारी कठिन होगा। मैं तो मथुरा में किसी को नहीं देख रहा है। शब्द के लालित्य से भले ही लोगों का आकर्षण करे, किंतु जो उसका सार्वभौम सत्य है उसकी तह तक पहुंचने वाले विद्वान बहुत कम है। उनमें से मैं समझता हूं कि ये यथार्थ योग्य और विद्वान है। इन लोगों का सानिध्य जब आप लोगों को प्राप्त है, मैं समझता हूं कि आप लोगों का यह परम सौभाग्य की बात है। मेरे आदरणीय उपस्थित सज्जनों और मथुरावासी, मैं सबसे पहले एक बात ये भी कहना चाहता हूं, मैं आप लोगों का चिर ऋणी हूं। मैं यहां पर भाषण देने के लिए नहीं आया, न तो मैं विद्वान हूं। हम लोग तो अकिंचन निष्किंचन चैतन्य महाप्रभु की धाराओं में केवल हरिनाम का ग्रहण करने के लिए, उनके अनुसार में कुछ राधा जी की महिमा कृष्ण की महिमा समझने के लिए, ब्रज की रूखी सूखी माधुकरी रोटियों पर जीवन निर्वाह कर यहाँ रहने वाले आए। बैकुंठ में हम लोग नहीं रहना चाहते, हम लोग कहीं भी द्वारका मथुरा अयोध्या भी नहीं रहना। ब्रज में जैसे तैसे लोगों की बातें सुनते हुए भी यहाँ की जूठी रोटी ऊपर निर्वाह करते हुए हम लोग यहाँ पर भजन कर सकें, और इस भजन में आप लोग हमारी सहायता करते हैं। योग्यता नहीं रहने पर भी इतना सम्मान आप लोग देते हैं कि मैं तो गदगद हो जाता हूँ। यथार्थ में आप लोग सज्जन आदमी हैं, इसलिए हमारे जैसे जिसमें कुछ भी गुण नहीं है तो भी इतना सम्मान देते हैं। आज कुछ गीता की इष्ट गोष्ठी है, आप लोग शास्त्री जी के सुगंध में सुने हूं। बड़े बड़े अंतरदेशीय अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठियां भी हुई हैं, आप लोग उसमें सम्मेलन में भाग लिए होंगे। गीता पर बहुत सी टीकाएं हैं। आज विश्व की ऐसी कोई भाषा नहीं है, ऐसा कोई राष्ट्र नहीं है जहां पर कि गीता का संदेश न पहुंचा हो और वहां पर गीता का अनुवाद उस भाषा में न हुआ हो। गीता जिसके गान करने से ही त्राण हो जाता है। जगत में तरह तरह की समस्याएं हैं। आज से 5,000 वर्ष पहले जो समस्याएं समाज को निगल रही थी, करीब करीब वही समस्याएं आज भी वो खड़ी हैं मुंह बाए हुए। भौतिक बाद घेर रहा है, ये सर ही सर्वस्व है। विषयों का संग्रह करना ही हमारे जीवन का प्रधान कर्तव्य हो गया है। आत्मा की भूख मर चुकी है, भौतिक विषयों का सुख, इसकी भूख हमें खूब जोरों से लगी हुई है। आज हमारा भारतीय संस्कृति का जो मूल धरोहर तत्व विचार था, आज जाने कहां चला जा रहा है। सब लोग मानो उसे सो रहे हैं। सबसे गीता का पहले का ज्ञान कृष्ण कह रहे हैं, गीता अनादि शाश्वत। गीता एक ऐसा अनुपम संस्कृति का एक अमृत स्वरूप है जिसमें सर्वकालिक सर्वसामयिक सर्वदेशीय समस्त समस्याओं का निदान है। केवल वर्तमान काल का ही नहीं, न अतीत काल का, न भविष्य काल का, अनादि अनंत काल से जितनी प्रकार के लिए कोई भी समस्या उठ सकती है उसका सरल सहज अत्यंत स्वाभाविक रूप में समाधान गीता में है। अर्जुन कोई बद्ध जीव नहीं थे, कृष्ण कोई मनुष्य या केवल आचार्य नहीं थे, इसीलिए गीता की महिमा में ही वो लिखा गया, सर्व उपनिषदो गाओ दोग्धा गोपाल नंदन सुधीर भोक्ता पार्थो वत्स। गीतामृतम
दुग्धम गीतामृतम।
समस्त जितने उपनिषद हैं, वेद हैं, उपनिषद मैंने यहाँ पर वेद ही धर रखी है, समस्त वेद और उपनिषद श्रुतियां जितनी हैं, वेद के अतिरिक्त पुराण, पुराण को भी वेद से अलग मत रखेंगे, महाभारत इत्यादि पंचम वेद है, वेदों के अर्थ को पूर्ण करते हैं या वेदों से भी अधिक पुराने हैं, इसलिए ये पुराण शब्द है, वो वेदों से अलग नहीं। क्लिष्ट भाषा में वेद हैं, पुराण जरा सरल भाषा में, किंतु भाव वेदों से भी अधिक गंभीर है पुराणों का। तो ये सब मिलकर के गाय है, कृष्ण स्वयं इसके दोहन करने वाले गोप हैं। पार्थ जो हैं वो वत्स हैं, और सूफी जन जो हैं ये भोक्ता है, और गीता के उपदेश ये जो अमृत है ये दुग्ध स्वरूप है। कोई कोई समझ लेते हैं ये अर्जुन को मोह हो गया था, अर्जुन को कभी नहीं मोह हुआ। गुडा केशो इत्यादि जो सप्त गीता में है, इसके द्वारा ऐसा समझा जाता है कि अर्जुन मुक्त महापुरुष थे। केवल मुक्त ही नहीं, मुक्त से बहुत ऊपर कृष्ण के सखा थे। कृष्ण जब आते हैं तो अपने परिकरों के साथ में आते हैं, जैसे कृष्ण गोपियों इत्यादि के साथ में, ब्रजवासियों के साथ में आए, उनमें कोई भी बद्ध जीव नहीं थे या बद्ध कोई गोपियां नहीं थी। या तो नित्य सिद्धार्थ कृष्ण की परिकर राधा जी की कायद्यू हैं, या कृष्ण के कायद्यू स्वरूप, अथवा साधन सिद्धा, ऐसे सब लोग थे कृष्ण के लीलाओं में। उसी प्रकार से अर्जुन मुक्त महापुरुष थे, किंतु उनको कुछ बछड़ा का काम करना पड़ा, जैसे गायों को पिन्हाने के लिए बछड़े की आवश्यकता होती है, किंतु वो केवल दूध बछड़े के लिए नहीं, विश्व के लिए था, और विश्व के लिए है और रहेगा। इसलिए अर्जुन बद्ध जीव नहीं है, योग माया के प्रभाव से कृष्ण की जितनी भी लीलाएं होती हैं तो आत्म माया के द्वारा करते हैं, इसलिए योग माया के प्रभाव से अर्जुन को कुछ मोह जैसा हुआ, जैसे यशोदा जी को या कृष्ण को स्वयं बागफल रस का जो आस्वादन इत्यादि करते हैं, ये मुग्धता उनकी और सर्वज्ञता दोनों साथ में होती है। उनकी जो मुग्धता है वो योग माया के प्रभाव से, योग माया मैंने अपनी माया, आत्म माया है वो, किसी दूसरे की माया नहीं, और उनके साथ साथ में सर्वज्ञता भी होती है। जिस प्रकार से ऐश्वर्य और माधुर्य कृष्ण का दोनों का एक साथ में रहना आवश्यक, उसी प्रकार से ये मुग्धता, अर्जुन की मुग्धता और उनकी वो मुक्त महापुरुषता दोनों साथ साथ। यदि ऐसा नहीं होता तो ऐसा दूध भी नहीं होता। किंतु एक बात मैं प्रसंग बस कह देना चाहता हूं, गीता की तो इतनी महिमा है, गीता में सब कुछ है, किंतु गीता आखिर दूध ही है। दूध को गर्म करके दही बनाया जाए और उस दही का मंथन यदि किया जाए तो मंथन करने से मक्खन, और उसको फिर गर्म कर दिया जाए तो मक्खन से भी कुछ असाध चीजें आ जाते हैं, तभी उपयोग आती है, फिर उसमें से घी निकलता है। ये घी स्थानीय श्रीमद् भागवत है। श्रीमद् भागवत को समझने के लिए गीता का यदि पटभूमिका न रहे तो कोटि जन्मों में भी हम श्रीमद् भागवत कभी नहीं समझ सकते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत का भी आधार ये गीता है। हम लोगों के गौड़ीय वैष्णवों के आचार्य के अनुसार में दो चार बातें मैं कहूंगा, अधिक मैं नहीं निवेदन करूंगा। विद्वत समाज हैं और ये पंडित जी भी हैं, आप लोग उसको कहेंगे। गीता में करीब करीब चार पांच उपदेश दिए गए हैं, पांच प्रकार के उपदेश। एक जिसको जनरल कहते हैं साधारण उपदेश, दूसरा गुह्य उपदेश, तीसरा गुह्यतर उपदेश, चौथा गुह्यतम उपदेश और पांचवा है सर्व गुह्यतम परमम वचः। ये पांच प्रकार के उपदेश पाए जाते हैं। मानो अर्जुन को मोह हो गया अपने कुटुंबों को, बंधु बांधवों को, भाइयों को, ससुर को, या किसी को मारेंगे नहीं, धनुष बाण लेकर के रख दिया, मोह हो गया। इस मोह को ही उन्होंने पांडित्य समझा। कुछ समझ न सके, किन कर्तव्य विमूढ़ हो गए। हम लोग भी अपने जीवन काल में ऐसे ही विषय आते हैं, समस्याएं आती हैं, किन कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं। उस समय में यदि ऐसा कोई योग्य गुरु हो जिसके चरणों में सर्वस्व समर्पण कर सकें और जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूंगा, ऐसा यदि भाव हो और गुरु भी कैसा हो, सब्द ब्रह्मनिष्ठ पर ब्रह्मनिष्ठ और संसार से आसक्ति रहित, जिसका श्रीमद्भागवत में लक्षण दिया गया है, गीता में भी बतलाया गया है, ऐसा यदि गुरु हो और उसके चरणों में सर्वस्व अनकंडीशनली बिना किसी शर्त के हम अपने को अर्पण कर सकें, तो गुरु उसको कुछ बतला सकता है। अर्जुन ने कृष्ण के चरणों में अपना सर्वस्व समर्पण करके कहा, आप जो कुछ कहेंगे करिष्येत, मैं आपके वचनों को मानूंगा, आप जैसा कहेंगे वैसा ही करूंगा। मैं सोच नहीं पा रहा कि मुझे क्या करना चाहिए, युद्ध करना चाहिए या नहीं। यह उनका मोह था। कृष्ण ने यहीं से आरंभ किया, अशोच्यान अन्न शोच स्तन प्रज्ञावादांश भाष से गतासु न गतासु नाम शोचन। अरे मूर्ख की तरह के होकर के और पंडितों जैसा बोलता है, अरे ये चले गए या चले जाएंगे, उनके लिए तुमको ये कैसे अनार्य जुष्टम अनार्य उचित, जो बुद्धिमानों के लिए ये शोभित नहीं है, ऐसे के लिए तुम मोहित हो रहे। जो नहीं जाएंगे, जो चले जाएंगे, जात से ही ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म मृत्य, जो जन्म लेता है उसके मृत्यु भी अवश्यंभावी है, इसके लिए बुद्धिमान पुरुष शोक नहीं करते हैं, इसलिए तुमको शोक नहीं करना चाहिए। बांसास जीर्णानी जथा विहाय इत्यादि श्लोक बोले। नैनं छिदंति शास्त्राणी नैनं दहात भाव, दो प्रकार की वस्तुएं हैं, इसलिए साधारण रूप में आत्म और अनात्म तत्व का विवेक उन्होंने प्रस्तुत किया, जो सबके लिए पृष्ठभूमि में सबसे पहले ये गीता में जरूरत है। आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, इसका यदि ज्ञान नहीं होगा तो वो मोहित होने के लिए बाध्य है, माया अवश्य हो जाएगा। इसलिए दो प्रकार की चीजें हैं, जितनी भी दृश्यमान जिसको हम लोग देख रहे हैं, ये सब प्रकृति से उत्पन्न हुआ, ये मायामय वस्तु है जो कुछ हम देख रहे हैं, ये अचेतन है प्रभु की लीला है, विलास है, किंतु है अचेतन, जिसमें स्वतंत्र इच्छा शक्ति नहीं होती, जिसमें स्वतंत्र सुख दुख की अनुभूति नहीं होती, उसको कहते हैं अचेतन। ये शरीर सब समय मरा हुआ है, इसका जन्म है मरण भी है, और इसके अंदर में जो आत्मा है वो अजर अमर है, ये कपड़े जैसा बदलने वाला है, इसमें सुख दुख की अनुभूति नहीं है, स्वतंत्र इच्छा शक्ति भी नहीं है, कर्तृत्व भी नहीं है, किंतु हम इसी को सब कुछ मान बैठे हैं। इस शरीर के मरने से हम मरेंगे और शरीर के जीवित रहने से जीवित रहेंगे, आत्मा इसके अतिरिक्त भी रह सकती है। आत्मा माने होता है मैं, ये मैं हूं कौन, ममैवांसो जीवलोके जीव भूत सनातन, ये भगवान का अंश है। इसके संबंध में बहुत सी बातें हैं, उस दार्शनिक रूप में नहीं जाऊंगा, किंतु ये समझिए कि हम उनके नित्य दास हैं। अंश माने यहां दासत्व का भाव, भगवान का कोई टुकड़ा नहीं होता है, भगवान तो सब समय परिपूर्ण अखंड तत्व है। तब उनकी शक्ति के द्वारा ये सब मंत्र की भांति जैसे किसी चीज से प्रकट हो जाती है। हम लोगों के संप्रदाय में इसको परिणाम बतलाया गया है, शक्ति परिणाम। वल्लभाचार्य ने भी इसी रूप में कुछ किया है। सब वैष्णव के विचार करीब करीब थोड़े से वैशिष्ट हैं, कहीं भी वैष्णव आचार्यों में कोई अंतर नहीं। इसलिए समस्त जीव कोई मानो और न मानो जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। प्रत्येक जीव उनको भूल करके इस जगत में शरीर में मैं की बुद्धि आत्मबुद्धि आई है, इसलिए सब मोह का कारण है। यदि कोई सुख और शांति चाहता है, यदि कोई भागवत और गीता में प्रवेश करना चाहता है, अपनी संस्कृति में प्रवेश करना चाहता है, इस लोक में परलोक में सुखी होना चाहता है, तो उसको समझना चाहिए ये अनात्मा है, इसके अंदर में आत्मा है। पशु पक्षी की पतंग तीन गुलमलता सबके अंदर में आत्मा है। उसका जो दर्शन करता है वही यथार्थ पंडित है। सुकर में भी वही आत्मा, गाय में भी वही आत्मा, वही मैंने वैसी ही आत्मा समझ आती है, सर्वत्र वही आत्मा, वैसी ही आत्मा है। इसको जो दर्शन करता है संभाव से और प्रभु का अधिष्ठान ज्ञान करके सब जीवों को आदर देता है, वो यथार्थ पंडित है। इसीलिए गीता के द्वितीय अध्याय में आत्म और अनात्म तत्व का भी विवेचन किया गया। ये साधारण विचार है। इसलिए सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभा जय जो जीवन मरण हानि लाभ जस अपजस सब विधि हान, ऐसा समझ करके इसको परमार्थिक न समझ करके इसको केवल ये जगत में रहने के लिए जहां तक हो सके इसको समझ करके चलना चाहिए। ये साधारण उपदेश है। मरना जरूर, आज मरेंगे कल जरूर मरेंगे, इसलिए अपने कर्तव्य पर निश्चित रूप में ठीक रहेंगे। इसलिए कर्मण्य वाधिकार से मां फले सुकदाचन, फल में तेरा अधिकार नहीं है, कर्म में तुम्हारा अधिकार है। इसलिए तुम्हारे जो कर्म मने क्या शास्त्र भीत यदि है तो कर्म है, मनमाने ढंग से चोरी ये कर्म नहीं है, ये सब पाप है। इसलिए शास्त्र भीत यदि कर्म है तो ठीक है, ऐसे कर्मों का मैं तुम्हारा अधिकार है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, जो एक ये श्लोक गीता का इसका अनुसरण कर लेगा बस उसका जीवन धन्य हो जाएगा, वो सुखी और शांति हो जाएगा। तो भी कुछ बाकी रहेगा, उसका जीवन इसी से सफल तो नहीं हो जाएगा, सर्वस्व तो नहीं मिल जाएगा, किंतु हाँ प्लेटफॉर्म बन जाएगा। इसलिए कर्म में हम सबका अधिकार है, शास्त्र भी कर्मों में अधिकार है। इसलिए वर्णाश्रम धर्म के नियमों को पालन करते हुए हम फल की आकांक्षा को छोड़ करके, कर्म फलों की आकांक्षा छोड़ करके निष्काम रूप में हम जो कार्य करते हैं ये मुक्ति का द्वार स्वरूप हो जाता है। इसी को ज्ञान तत्व कहते हैं। ये ज्ञान तत्व ही या ब्रह्म ज्ञान जिसको कहते हैं, यह रहस्यपूर्ण ये गुह्य विषय है। मुक्ति का ये मत अर्थ समझ लीजिए कि ब्रह्म